ஹரே கிருஷ்ண. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்ய நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வ்யாசம் ததோ ஜயமுதீரயேத். கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகீ நந்தனாய ச நந்தகோபகுமாராய கோவிந்தாய நமோ நமஹ. நமோ பங்கஜநாபாய நம பங்கஜமாளினே நம பங்கஜநேத்ராய நமஸ்தே பங்கஜாங்க்ரை. ஓம் அஜ்ஞானம் திமிராந்தஸ்ய ஜ்ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷுருன்மீலிதம் ஜேன தஸ்மை ஸ்ரீகுரவே நமஹ. ஸ்ரீச்சைதன்யமனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஜேன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதாமைஹம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். வந்தே அஹம் ஸ்ரீகுரோ ஸ்ரீயுத பதகமலம் ஸ்ரீகுரோன் வைஷ்ணவான்ஷ ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சஹகணம் ரகுநாதம் நிதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சஹிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சஹகண லலிதா ஸ்ரீ விசாகானிதம் ச. நமோ விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த ஸ்வாமீநிதி நாமினே. நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாஷ்சாத்ய தேச தாரிணே. ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபோ நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்தவ்ருந்த. போலி ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஜெய கிருஷ்ண ஜெகநாத ஜெய வைகுண்டநாமத்ரிக் ஜெய தேவ கிருபா சிந்தோ ஜெய லக்ஷ்மீபதே பிரபோ ஜெய நீளாம்புஜ சியாம நீளஜீமுத சந்நிப ஜெய பத்மாதரி த்ரிபியாம் நிசேவித பதாம்புஜம் ஜனார்தன ஜகத பந்தோ சரணாகத பாலக த்வம் தாச 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 தாசானாம் தாசத்வம் தேஹி மே பிரபோ தாசத்வம் தேஹி மே பிரபோ.
सब भक्तों से प्रार्थना है कि जैसे जैसे कथा आगे बढ़ेगी लोग और बढ़ते जाएंगे, इसलिए सबसे प्रार्थना है कृपा करके आगे आ जाइए, जितना आगे आप आ सकते हैं कृपा करके आगे आ जाइए, और बीच में अगर आप गैप मेंटेन ना करें ताकि ज्यादा सा लोग बैठ सके और डिस्टर्बेंस ना.
धन्यवाद. तो कृष्ण भगवान का कंस के कारागार में प्रकट होने के बाद वसुदेव जी ने उनको उसी रात ट्रांसफर कर लिए थे गोकुल में, ये बात कंस को पता नहीं चला। केवल कंस नहीं, उनका किसी भी प्रकार एजेंसी को पता नहीं चला। कंस को पता यही चला कि वसुदेव और देवकी के जो अष्टम संतान एक कन्या हुई, और उनको सूचना भी वही मिला था, और उन्होंने उसको मारने के लिए प्रयत्न तो की, लेकिन उनके हाथ से वो देवी अष्टभुजा देवी बन करके आकाश में गई और उनको डांट करके चेतावनी दी, जिसके कारण कंस ने अपने बहन और भिनोय को कारागार से मुक्त करके उनको भगवद गीता का क्लास लिया उनके पास, सेकंड चैप्टर का, उनको माफ़ी मांग लिया। और आकर के, क्योंकि वो देवी ने उनको बोले कि आपको जो मारने वाला तो कहीं प्रकट हो चुका है, तो झूठ मूठी दिन देवकी को क्यों कष्ट दे रही है, बस देव देख। तो उन्होंने माफी मांग करके पुतना को एक प्रोजेक्ट दी, अभी जितने आने वाले एक महीना और बीते वाले एक महीना के अंदर जितने शिशु प्रकट हुए सबको मार देने के लिए ये आइन पास कर दिया गया। यहां गोकुल में नंदोत्सव होने लगा और पुतना का टारगेट रहा कि यहां भी बच्चे पैदे हुए हैं, तो मारने के लिए वो गई और स्वयं मर के आई। आई तो नहीं मरी, आए नहीं। तो पुतना के बाद में कंस के बड़े बड़े असुर नायकों का नंबर लगा, एवरीडे एक के बाद एक नंबर लग रहा था, प्रतिदिन कंस ने चुन चुन कर भेज रहा था ब्रजगोकुल में, लेकिन दुर्भाग्य ही था सबका वन वे टिकट था, रिटर्न टिकट किसका नहीं मिल रहा था, पता नहीं रिटर्न टिकट क्या, कम से कम है मरे तो उनके डेड बॉडी वापस आए का संस्कार होता मथुरा में, बॉडी भी नहीं वापस आता था, केवल मैसेज आता था वापस कि हो गया काम उनका। क्या करे, भगवान भी तो नियम बना रखे ना, गीता में होगा ना कहे ना, क्या कहे, जद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमंग मम, मेरा धाम तो वो है जहां जाने के बाद फिर नो रिटर्न, वापस नहीं आते तो फिर क्या करेंगे बेचारे, कैसे आएंगे। जब वहां गए उनके पास फिर वापस कैसे आएंगे। तो कंस का चिंता बहुत बढ़ गया था कि पता नहीं ये लड़के कैसे इतने बड़े बड़े बलशाली असुरों को मार देते हैं, चिंता में तो पड़ा था। एक दिन इस प्रकार अपने दरबार में कंस महाराज बैठे थे, राजोद्यान से दूत आकर खबर दिया, महाराज देवर्षि पधारे हैं और आपके दर्शन इच्छुक हैं। कंस ने देवर्षि का नाम सुनकर के थोड़ा हंसने लगा, मन में इतना आदर व्यक्त नहीं किया देवर्षि के प्रति, क्योंकि लगा देवर्षि जी को उनका काम नहीं, केवल आपस में झगड़ा लगाते हैं, मुझे क्यों झूठ मूठ क्यों बोल दिए, मैं तो नहीं मार रहा था देवकी बच्चों को, छोड़ दिया था उनको, मुझे इसे उकसा दिया मुझे मार दिया अबेकार का। लेकिन फिर मैं मन में आया, लेकिन देवर्षि की उपेक्षा नहीं किया जा सकता है, कि ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन उनसे प्राप्त होता है जो बहुत महत्व रखता है। तो उठ करके तुरंत आया, आके प्रणाम किया और उनको आदर करने का जो उपाय करने लगा। देवर्षि बोले, अरे रख रख भोजपति, आपका आदर अवर्तन रख, तुम समझ रहे हो कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन ठग गया तुम। कम सब चौंक गया, क्या मैं ठग गया, हंसने लगा, बोला मुझे तो ये पता नहीं था कि देवता लोग भी आजकल झूठ बोलने लगे, और साक्षात आप भी छल करते मेरे साथ, ये मुझे कभी विश्वास नहीं था। उनके बाद पूरा नहीं होते ही देवर्षि जी ने डांट कर इसी स्वर में उनको बोलने लगे, अरे मूर्ख, तेरा अज्ञान पर, तेरा असावधानी पर तेरा भरोसा नहीं है, ना तो देवता कभी झूठ बोलते हैं, ना नारद किसके साथ छल करता है। तो क्या झूठ नहीं बोलते? तो क्या मैं तो देवकी का जो अष्टम पुत्री नारे, कैसे पुत्री? पुत्री देवकी का, देवकी का कहां पुत्री हुआ? देवकी का तो अष्टम पुत्र हुआ, पुत्र? अरे कैसे पुत्र? मैं तो उसको मारने गया तो देवी, अरे यही तो बोलते, तो ठग गया ना। फिर तू जिसको मारने गया, तू तो यशोदा की बेटी है, नंदात्मजा। अच्छा फिर वसुदेव का अष्टम पुत्र, अरे वो तो ट्रांसफर हो गया रातों रात, तुझे पता नहीं चला। जो गोकुल में सारे आपके भेजे हुए असुर नायक जो मार रहे हैं ना, जो राम शाम दो बच्चे, वही दोनों ही वसुदेव के बेटे हैं। एक देवकी के है, एक रोहिणी के है, और आपको बताना चला। अरे बाप रे बाप, बोला केवल यही नहीं है और सारे अभी तक इतने असुर तुझे मार चुके, तुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा? ये थोड़ी देवकी का है, तू जिसे मार करके सोच रहा था देवकी, देवकी क्या वो पुत्री नहीं है? तो जसदा की पुत्री है, तो कंस को गया। अरे तो सही कह रहे हैं, कंस का उस दिन का बात, वो देवी का बात हु बहुत स्मरण में था। देवी ने उनके हाथ से फिसल जाने के बाद वो, रे मूर्ख कंस, तू इसी दुखी दीना देवकी को क्यों इतने कष्ट दे रहे हो? बोले अगर उनका बेटी होता, माँ का नाम तो सम्मान से लिया होता, इसे थोड़ी बोलता। तभी उनका बुद्धि नहीं था, अभी समझ में आ रहा है। बोलते वो सही में उनका बेटी तो नहीं होगा, अरे मेरे साथ तो छल हो गया, मैं ठग गया। इतने गुस्सा हो गया, तुरंत उनका हाथ तलवार पर चला गया, खींच लिया, तो अब भी मार देता हूं उनको, बस देव देवकी मेरे साथ छल किए, और मुंह मोड़कर चल पड़ा मारने के लिए उद्यत हो। नाराज जी बोले, अरे मूर्ख ऐसी चंचलता मत करो, ना तो फिर तू उनको मार देगा, वो तो तेरे काल नहीं है, वो तेरे तो शत्रु ना उनका पुत्र। अरे पुत्र तो बढ़ रहा ना, सारे असुरों को 70% सफाया कर चुका है, तो उनको मार के करेंगे क्या? पास में है, अगर कहीं छिपके तो मारेंगे तुझे उनके के? अरे अगर उनके पिता है तब तो कभी आने का संभावना है, पिता नहीं रहेंगे तो आएंगे ना तुझे मारने के लिए, आएंगे केवल। अरे बड़े गलती हो जाता, उल्टी समझाने लगे, अगर उनको पिताजी को तो मरवा देगा कि कुछ करेगा तो भग जाए, तो क्या करोगे? अब तो पिताजी है, कम से कम आएंगे, कब से पास में तो रहेंगे। तब मन में लगा, अच्छा पिताजी को नहीं मारोगे, अगर उनके वसुदेव देव को पता चल जाएगा, वो शायद भाग ना जाए। फिर जब उन्हें छिपा करके अपने बेटे को लेकर पहुंचा दिया, मुझे पता भी नहीं चला, वो खुद भाग जाए, तब तुरंत वही बैठ गया सर में हाथ दे करके, बहुत दुखी हो गया। आज तो सभी के ऊपर उनका क्रोध आ रहा था, अपने ऊपर भी आ रहा था। इतने चिंता में जब बैठा तो नाराज जी आपने नारायण नारायण कह के चल बैठे। अब उठ करके बड़े भयानक मुंह से अपने विचार भवन में गया, बैठ करके खूब सोचा, प्लानिंग किया, प्लानिंग करके तुरंत वहीं पे ऑर्डर पास किया, बुलाया प्रहरी को, वसुदेव देवकी को दोबारा जेल में डाल दिया जाए। वही रूम था जेल का, वही चैन था, वही दरवाजा, वही वहीं में लेकर दोबारा डाल दिया गया। कुछ दिन पहले से लाए थे, फिर दोबारा उनको डाल दिया गया। डाल करके तुरंत अपने कैबिनेट मिनिस्ट्री मीटिंग बुलाया, इमरजेंसी मीटिंग, सारे मंत्री सब उनके पास सब आ गए, सबके सामने ये घोषणा किया, आपको पता नहीं है, नाराज जी से मुझे आज ही इन्फॉर्मेशन मिला कि ये जो दो लड़के हैं जो सारे हमारे असुर सेना को मार रहे हैं, वो तो वसुदेव के लड़के हैं, और इसमें वसुदेव का आठवां पुत्र भी शामिल है। अब नारद जी ने जाते समय में एक संकेत उनको दे करके गए थे, वो उनको पूछा था, बोला तब वस्तु देखे को मार नहीं सकता हूं, वो लड़के तो सारे मेरे असुर को मारते चले जा रहे हैं, तो मैं क्या करूं। नारद जी ने जाते जाते उनको सूचना दे गए थे संकेत में, बोले देखो कंस, सोचो ये दोनों बच्चे हैं और आपके इतने बड़े बड़े शक्तिशाली असुर को मार देते हैं, इतने समझ में नहीं आता ना क्या। नारे स्थान प्रधानम ना बल प्रधानम, वो स्थान की प्रभाव है, उनका बल इतना थोड़ी है, बच्चे हैं। तो नारद जी चले गए, तब कंस ने सोच रहा है बात तो सही है, हम भी देखते हैं एक कुत्ता भी अपने गली में शेर है, तो कुत्ता शेर भी आ जाए उनका पराठा करेगा, तुम ये नहीं आ सकते, मेरा एरिया है, इस कॉलोनी का मेरे तो है ना नहीं? तो बोली उनका गांव में जब तू भेजेगा यहाँ के असुर जान पहचान नहीं हो तो अपना गांव वाले मार देगा। तो इसलिए कंस सोचने लगा नारद जी ने सही कहे, सही इंफॉर्मेशन, इतने तक तुम भेजता रहता सब मरते हैं, उनको यहां बुलाना होगा, यही बुलाएंगे और तो पता नहीं मथुरा के गली तो हमारा है, हमारे सारे असुर बड़े बड़े हैं, वहीं लगवा कर मरवा देंगे, बड़े आसान है। इतने ये प्लान उनको पसंद आया, नारद जी को बहुत थैंक यू दिया। तो उन्होंने फिर इसी प्लान को एक्शन में लाने के लिए विचार किया, मन में ही सोच रहा था कि अभी हो गया, अब इन दोनों को यहां बुलाना है, लेकिन बुलाने से क्या आएंगे, कैसे आएंगे, उन्हें तो पता चला जो मर तो कहीं में बुलाऊंगा थोड़ी आएंगे, सबको दुनिया में विदित है, उनके जन्म होने से पहले उनको मारने के लिए मैं पीछे पड़ा हूं, उनके माँ बाप को जेल में बार बार डाल रहा हूं और उनको बुलाऊंगा वो आएंगे, किसी प्रकार से मार देना, बड़े अधेड़ बुन में फंस रहा था। नारद जी जाने के बाद तुरंत मीटिंग बुलाया, तुरंत उसको भी भेजा, आपने प्रधान सेनापति केसी की भी बुलाया, उन्होंने केसी नाम के एक असुर था जो एक घोड़ा के रूप में रहता था, देखने में जैसा एक अश्व था लेकिन था बड़ा असुर। अभी तक तो आप जितने घोड़े देखे होंगे सब शाकाहारी घास फास खाते ना, घोड़े मांसाहारी थोड़ी होते, लेकिन ये घोड़ा था जो मांसाहारी था, वो घास नहीं खाता था, ये असुर था, घोड़ा थोड़ी था, घोटक नहीं था। तो नरभक्खी घोटक कैसी, उसको कंस ने जीत करके लाया था, मथुरा में ला करके अपना क्वार्टर देकर रखा था, क्वार्टर क्या जंगल में रहता था, तो अब जहां रहता था आसपास में जंगल में जितने सारे वन्य पशु सब खा चुका था, पशु खत्म हो गए तो मनुष्य जो भी गुजरता था रास्ता सब खा जाता था, उनके आवास के आसपास कंकाल के भरा हुआ था, सब स्केलेटन सब खाया था उन्होंने। तो उनको बुलाया, केसी का पराक्रम से देवता लोग भी त्रस्त थे, इतने भयानक पर्वताकार असुर था, अश्व था। तो उनको बुलाया, बुलाकर कंस ने बोला कि शायद वो कुछ काम कर ले, तो केसी को समझाया, बोला देखो ऐसा, केसी ने हंसने लगा, मुझे क्यों आप समझा रहे हैं, मेरे शक्ति पर भरोसा नहीं, पता तो है लेकिन तुझे बता रहा हूं, तू तो जानता नहीं ना शत्रु को, ने उनको सारे आईडी बताया, फोटोग्राफ तो था नहीं तो दे देता कॉपी एक, तो बताया ऐसे सांवला वर्ण के है, पीला कपड़ा पहनते हैं, अब मर कुछ लगाते हैं, ऐसे जो भी वो सुना था, अभी देखा वो भी नहीं था, जो भी सुना था सारे हुए उनको पूरा समझाया, और ये बताया देखो उनको अब नहीं मारोगे तो किसी प्रकार तो एक को मारो, नहीं तो किसी भी प्रकार जख्म करके आ जाओ, वो तो बोला मैं दोनों को मार दूंगा, देखो ट्रायल लो। तो समझा बुझा कर खूब पूरा भरोसा देकर के भेजा, कैसी तो बोला आप चिंता मत करो, आप बेफिक्र रहिए, मानो कि गए हो, अभी से मान लो कि मर गए, मुझे काम दिए तो हो ही नहीं सकता कि वो बचे। तो कैसी ने उस रात मथुरा निवास किया, दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग निकला, सुबह सुबह निकल करके आया, भगवान ने अभी तक अपने गाय बछड़ा चराने के लिए घर से निकले नहीं, कलेव आदि करके रेडी हो रहे थे, गाय निकाले नहीं, वो आकर पहुंच गए। और जो इंट्रोडक्शन कंस से मिला था उन्हीं को देखना चाह रहा था, वो किसी को देखता नहीं था रास्ता में, बोला ना वैसी लड़का होना चाहिए मुझे, उसी को वो मेरा टारगेट है। इतने भयानक गर्जना करके दौड़ रहा था, पूरा ब्रज में सारे लोग घबराहट हो गया उनको देख करके। इतने जोर से अपने जो आगे वाला जो पैर में खुदाई कर रहा था मिट्टी खुरा से, और इतने जोर से चिल्ला रहा था, हनीनाट कर रहा था कि आकाश में देवता लोगों का हाल खराब होता, उसको भाग करके जाए छिपना चाहते थे। तो उन्होंने आके पहुंचा तो सारे ब्रज के सब लोग दौड़े दौड़े नंद भवन की ओर आ रहे थे, क्या होगा क्या होगा। गोष्ठ में गाय बछड़े चिल्ला करके सब अपने अपने रस्सी तोड़ करके भागना चाह रहे थे। तो कृष्ण ने अभी रेडी हो रहे थे, इतने हो हल्ला सुन के बाहर आ गए और देखे कि प्रकांड अश्व भागते चला जा रहा है और सब आवाज दे रहे हैं कि कृष्णा चले जाओ चले जाओ, एक नरभक्षी घोड़ा है कुछ करेगा, हट जाओ हट जाओ। भगवान किसका इस प्रकार आवाज से नहीं चलते, भगवान को कोई आर्त प्राणी आपने रक्षा के लिए पुकारे, क्या कोई भक्त आपने प्रेम में पुकारे, ये दोनों बात को तो सुनते, बाकी आपने को बाकी नहीं सुनते हो। तो ने देखे अश्व दौड़ते तो खुद गर्जना करके उनको बुलाए। अब अश्व का जो हिनहिनाहट था असुर का, वो तो पाताल से लेकर स्वर्ग पर्यंत कंपमान करता था, लेकिन ये भगवान छोटे बालक के रूप में उसको चले, ए घोड़े क्यों भागते चला जाओ, इधर आ मैं इधर खड़ा हूं। ये शब्द उनका कान में जैसे पर्दा फटा दिया, बोलते ये क्या हो रही थी भयानक गंभीर गर्जन। मोड़ करके देखा, अरे ये तो वही लड़का है जिसके लिए मैं भाग कर जा रहा हूं, तो वही खुद बुला रहा है, वही तो है। ये बात सही है, भगवान को कोई कभी अन्वेषण करके अपने बलबुते पर नहीं पा सका ना, कितने दौड़ लगाओ ढूंढो खोजो नहीं पा सकते। वो जब स्वयं आपने कृपा करके आपने दर्शन दे दे बुलाए तब कोई पा सके। ये बदमाश असुर किसी कैसे पा सकता था दौड़ ढूंढ करके उनको, वो खुद आकर बुलाए कि आओ मैं इधर खड़ा। तो देख करके बड़ा प्रसन्न हो गया, बोला चलो मैं अभी कहां कितने ढूंढता हूं, स्वयं मिल गया मुझे बुला रहा। आप देख करके आपने टारगेट जब मिल गया, आप अटैक करने के लिए अपना उपक्रम किया, पूरे उपक्रम करके गरज तरस करके सारे अपना कार्यक्रम दिखाने के बाद अब अटैक करने के लिए आया। घोड़े का अटैक तब जानते हैं, घोड़े गधे का एक स्टाइल का अटैक होता है, सामने से खूब बेग से दौड़ कर आएंगे, पास में आने तुरंत मोड़ जाएंगे, है ना नहीं, फिर बैक अटैक करेंगे दुलत्ती चलाते हैं, उनका ही स्टाइल होता ना। तो बहुत बेग से दौड़ कर आया गर्जना करके, आ करके तुरंत पदाघात चलाया उनके ऊपर। भगवान ने थोड़ा खिसक गए, भगवान तो जन्म से नटवर नागर है, इतने प्रसिद्ध नृत्य कला में ये विशिष्ट हैं कि तुरंत पदविन्यास करते हैं, फिसल गए, उनका जो मार बेकार हो गया। दोबारा उठाकर चलाया, इस बार भगवान ने पकड़ लिया उसका पैर, पकड़ करके घुमा करके फेंक दिए, कहते 100 धनुष दूर तक फेंक दिए। अगर वो साधारण घोड़ा होता तो मर जाता, लेकिन वो तो देवताओं के, पहले उनका इंद्र का घोड़सवार था, तो इसलिए वो मरा नहीं, विशेष असुर था, मूर्छित हो गया जरूर। थोड़े देर से मूर्छा में उठा, उठ करके अब तो महाक्रोधित हो गया, बड़े क्रोध में आकर बोला ये हाथ पर नहीं चलेगा, पकड़ लेता मुझे, खा जाऊंगा उसको, बच्चा सा तो है, देखने में कितने कोमल दिखाई पड़ता है, भगवान के रूप इतने मुलायम, इतने कोमल था, इतने सुकोमल शरीर उनका था, और सोचा चलो मुंह में निकल जाऊंगा, उसे खा जाऊंगा चुहा। पर्वत की गुफा जैसा मुंह इसे खोल करके दौड़ा, बड़े बड़े दांत था उसका, दौड़ा बड़े वेग से, दौड़ कर आया मुंह खोल करके भगवान को निकल जाने के लिए। सबको देखते देखते भगवान ने हाथ ऐसे कर दिए, उसका मुंह के अंदर हाथ ऐसे घुस गया। सुखदेव जी कहते हैं जैसे कोई जंगल में कोई एक गर्त हो मिट्टी में, और कोई सांप उस गर्त में कैसे प्रवेश कर जाता, कोई कठिनाई होता है उसको, सट करके घुस जाता है एक बार, तो ऐसे ही घुस गया भगवान के हाथ। लेकिन इसने सर्प को उदाहरण दिए, लेकिन ये काल सर्प जैसे उनका हाथ था। जैसे उनके मुंह में भगवान का हाथ गया, पता नहीं कितने हाई वोल्टेज में हट था उन्होंने। भगवान तो देखने में तो बड़े कोमल सुशीतल शरीर था, लेकिन सुशीतल शरीर और हाथ तभी इतने हाई टेम्परेचर था, उनके मुंह से प्रवेश करते उनका हाथ का स्पर्श मुंह से हुआ, सारे दांत निकल गया उसका, ठप ठप कर उसे दांत गिर गए। वो गिरे तो बाहर भी नहीं गिरा, सारे अंदर चला गया, पेट के अंदर गया सारे। वो उनको निकलना चाहता था, अपने दांत को निकल गया पहले बेचारा घोड़ा ने अपने दांत को पहले निकल गया खाया, और उसके बाद में हाथ गया उसके अंदर। भगवान तो अनंत है, और गया उनका तो कोई लिमिट होता है नहीं, हाथ गया घुसते चला गया, घुसते चला गया, अरे बढ़ते चला गया, उनका सारे नाली फली सब जाम हो गया, चोक हो गया, सांस रुक गया, और इतने हाई वोल्टेज हर्ट था बेचारा, तुरंत गिर पड़ा और पैर छटछटापट करने लगा। मल त्याग करते हुए, चित्कार करते हुए उल्टी तरफ हो करके थोड़ी समय छटपट करके मर गया आसान से। भगवान ने फिर हाथ निकाल दिए। भगवान के जो बाकी ग्वाल साथी सब खड़े थे देख रहे थे, सब दौड़ कर आ गए, आके देखे चुभा तो नहीं हाथ को, दांत तो नहीं लगाना। देखते कृष्ण बोलता है अभी तक मुझे कोई नहीं काटा है, देखा नहीं, हाँ कैसे नहीं काटा, देखूं अभी, देखो कुत्ता के अंदर डालता हूं, उसमें डालता हूं, कोई नहीं मुझे काट सकता, सही में कैसे काट सकता, जो अविनाशी है तो कौन काट कैसे सकता है उनको तो इसे खेल खेल में किसी को समाप्त करने के बाद मैसेज पहुंचा कंस के पास, तो कंस तो सिल मिला उठा, बोला अरे कैसे इसे आसन से मर गया, उसके मुंह के अंदर निगल भी चुका था हाथ को तब भी। अब तो बोला ना और काम नहीं, यहां बुलाना पड़ेगा, ये नहीं चलेगा, कुछ तो गड़बड़ी है, कुछ तो गड़बड़ी है। तो बुलाने से पहले क्यों बुलाऊं, कैसे बुलाऊं, क्या करूं, बैठकर खूब सोचना लगा। एक प्लान मन में आया कि ऐसे बुलाने से तो नहीं आएंगे, देखने जाए तो खैर मेरा भांजे तो है, ये तो सभी जानते हैं, रिश्ता में मेरा भांजे तो है, मैं अगर कोई विशेष उत्सव करूं और उनको निमंत्रण भेजूं बुलाने के लिए तब आ सकते, कोई दूसरे लोग भी मुझे दोष भी नहीं देंगे, पूरे जनपद वासी जो हैं वो भी सोचेंगे नहीं इतने बड़े उत्सव हो रहा है, बहुत बड़े सजावट हो रहा है, बहुत बड़े कार्यक्रम है, इतने बड़े उत्सव में आपने लोगों को सभी को बुलाया, उनको भी बुलाया, तो आपने मन में बहुत बड़े उत्सव के योजना बना लिया, बना करके दोबारा मीटिंग बुलाया, बुला करके इनमें से स्पेशली बुलाया था कुबड़ा पेड़ के जो महामात्र महंत है उसको बुलाया, सारे अपने मल्ल गोष्ठी पंच महामल्ल थे उनको बुलाया, और बड़े बड़े मंत्री उनको सब बुलाया, बुला करके मीटिंग किया, बोले देखो आपको तो सब पता है ना, हाँ महाराज पता है कि आपके कारण, तो ये देखो इस बार हम किसी को भेजेंगे नहीं वहाँ, उन दोनों को यहां बुलाया, और क्लैपिंग बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, यही बुलाया हम, यही है देख लेंगे। तो आप सब तैयार हो जाओ, लेकिन देखो ऐसे बुलाने से नहीं आएंगे, तो बहुत बड़े फेस्टिवल के आयोजन में करने जा रहा हूं, और उस फेस्टिवल में जो मेन मेन इवेंट रहेगा, अभी शिवरात्रि आ रहा है, तो शिवरात्रि के उपवास करेंगे, हमारे यहाँ क्षेत्रपाल उसी भक्त थे, भूतेश्वर जी के विशेष पूजा होगा, बहुत पशु बलि दिया जाएगा, और उसी दिन हमारा जो शिव धनुष है उनको उत्तोलन करूंगा, मैंने धनुर्यज्ञ होगा। अच्छा धनुर्यज्ञ, धनुर्यज्ञ तो मुख्य इवेंट होगा, उसके साथ में और इवेंट होगा, मल्ल युद्ध होगा, ये सब होगा, कई सारे और साइड इवेंट भी होगा, और इसलिए सारे मथुरा जनपद के आवार वृद्ध वनिता सभी को इन्विटेशन कंपलसरी सबको आना पड़ेगा, और भी जितने गेस्ट है ऊपर से नीचे सबको बुलाओ, विशेष सबके खाना पीना रहना बैठना का ले सब सजावट व्यवस्था सब किया जाए, सब फ्री ऑफ कॉस्ट, नो टिकट, स्पेशल इन्विटेशन वीआईपी पास देकर मैं भेज रहा हूँ उनके पास, वो आएंगे। सोचा कि वो खाली थोड़ी आएंगे, लड़के लोग उनके माँ बाप ऐसे छोड़ देंगे तुम, नहीं सबको बुलाएंगे, गोकुल में जितने गोप है सबको बुलाएंगे, ये तो मेरे प्रजाई है, भेंट लेकर आए, उत्सव में से भेंट देना। सब पसंद किए कंस के प्लान को, बहुत अच्छा करके, लेकिन अभी आकर गाड़ी उटक गया, अभी जाएगा कौन बुलाने के लिए, कार्ड लेकर जाएगा कौन, सब डर रहे हैं, असुर लोग तो सब अभी जा करके सब वन वे टिकट, रिटर्न तो कोई आया नहीं, तो इसलिए अब कौन जाना चाह रहा था नंबर, अब जितने तो गए अब बिन बुलाए से मरे इधर, अब कौन जाएगा फिर उनको बुलाने के लिए। यहां सोच में पड़ा तो कंस ने डिसाइड किया, नहीं एक भगत है हमारे कैशियर है उनको बुलाते हैं, वो बड़े पुजारी है, उसको साथ उनका साथ नहीं होगा, तो उस दिन एकादशी था, एकादशी के दिन ही बुलाया शाम को अक्रूर जी को, अक्रूर जी बोले भाई आज एकादशी में छुट्टी लिया था फास्टिंग करने, मुझे क्यों बुला रहे हैं आज महाराज, क्या बात है भाई, बुलाए उनको, बुला करके प्राइवेट कमरे में ले ली। कंस महाराज इतने प्रतापी असुर थे, और जब जिस दिन उन्होंने राजा बन बैठे जबरदस्ती, अपने आप राजा बन बैठे थे, कोई उछो पुछो नहीं हुआ था, स्वयं राजा बन गए थे पिताजी को जेल में डाल करके, अब उसी दिन से जितने अच्छे अच्छे लोग सब थे नागरिक मथुरावासी, सब भाग चले थे, मथुरा छोड़कर भाग गए थे सब परिवार, बहुत सारे घर खाली हो गया था, और आपने किस्म के लोग जितने टेररिस्ट सब बुलाकर पकड़ के लाके सब घर में बुलाओ, सब रुक जाओ, सबको दिला दिया घर, और कोई जदुवंशी तो बहुत कम रह गए, बाकी सारे जदुवंशी के जो अलग अलग वंश के थे उनको सब भाग गए थे। तो अक्रूर जी बिचारे जद्यपि भी जदुवंशी थे, लेकिन उनका मन में एक इच्छा था कि बड़े भगत थे, उन्होंने भी दर्शन नहीं किए थे, पता तो था उनको भगवान हरि प्रकट हुए हैं, वसुदेव के बेटा करके प्रकट हुए, लेकिन अभी आकर यहाँ बढ़ रहे हैं गोकुल में, हम अभी तक दर्शन नहीं किए, खबर सब ले रहे हैं, गाय चरा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे असुर को मार रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, खबर सब सुन रहे हैं, देखने के लिए मन तो इतने चंचल, इतने उद्वेग, इतने उत्साहित हो रहा है, लेकिन क्या करें, बोले अगर पता चलेगा कंस को तो मार देगा, उनको पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए बिल्कुल कृष्ण के प्रति उनके मन में कोई सद्भाव ही, बात पता ना चले, इतने भाव से अपना काम करते थे बेचारे, इस बात को कंस को पता था, तो कंस ने उनको बुलाया, बुला करके आपने कमरे में ले लिया उनका हाथ पकड़ करके, और कुर्जी सोते भाई इतने बड़े महाराज है ये, मैं तो एक साक्षात किरानी हूं, क्या सिर हूं, मुझे इतने स्नेह आज ममता क्यों दे रहे हैं, कुछ गड़बड़ी है लगता है, चलो बात क्या है रहस्य, कंस ने उनको हाथ पकड़ कर ले गया अलग से प्राइवेटली, बोला देखो अक्रूर जी आप मेरे परम मित्र हो, मैं तो आपके ऊपर पूर्ण भरोसा कर रहा हूं, आप इतने विश्वस्त मेरे हैं, क्या बताऊं। जैसे आप सुने होंगे कभी कभी देवराज इंद्र भी अपना काम बनाने के लिए बामन देव के ऊपर कैसे भरोसा करता है और काम बन जाता है उसका, ठीक इसी प्रकार मैं आपके ऊपर भरोसा करता हूं। अकुर जी अच्छा, इंद्र बामन देव के जैसे तुलना मत दे रहा है, क्या बात है भाई। अब देखो मेरा जो भी कार्य सिद्धि केवल आपके ऊपर निर्भर करता है, पूरे भोज अंधक वृष्णि जदु सारे वंश में कोई अगर एक व्यक्ति मेरा हितैषी हो तो आप ही है, और किसी का विश्वास नहीं करता। ऐसे बढ़ाकर बोलते गया, अकुर जी सुनते गए, अकुर जी बड़े नीतिज्ञ थे, वो जानते थे कुछ विशेष कार्य कराएगा, पता नहीं किस घाट उतारेगा। आप बोलते गए अकुर जी कुछ बोल नहीं रहे थे, वो तो केवल मुंह की ओर देख रहे थे, जानना चाह रहे थे, दृष्टि सही बता रहे थे, बात क्या तो बताओ सही, इतने प्रेस कर रहा है कि बात क्या है। तब कंस ने समझ गया कि अक्रूर ने बड़े जिज्ञासु हैं जानने के लिए, तब बता देखो आपके एक मेरा विशेष काम करना पड़ेगा, आपको तो पता है मैं क्या कर रहा हूं, और मेरे जो दो शत्रु हैं नंद बरजे में बढ़ रहे हैं, और कितने हमारे मर्डर कर चुके हैं पता भी है, तो हाँ हाँ पता है ना, बात यह है कि मैं आपको भेजना चाहता हूं, आप जाओ और उन दोनों को पकड़ के ले आओ, बुला के लेकर आओ। अकुर जी तो सुन के आश्चर्य हो गए, मन में इतने उत्फुल्लित इतने प्रसन्न चित हो गए, बोले हे प्रभु ये अभूतपूर्व दया, अरे जिनको दर्शन करने वृंदावन जाने के लिए मैं 24 घंटा डेली चिंतन करता हूं, लेकिन इसी के डर के मारे कुछ बोल भी नहीं सकता, आप आज ये स्वयं मुझे बुला करके बोलता है अलग से प्राइवेट में, तुम जाओ मुझे भेज रहे हो, हे भगवान ये तो अशेष अनुकंपा है मुझ पर, वो मुझे भेज रहा है कि सही मुझे भेज रहा है। तो अक्रूर ने बोले महाराज मैं तो आपके कर्मचारी हूं, आपके विश्वस्त हूं, हाँ हाँ तुम ही तो मेरा पूरा विश्वस्त हो, मैं उनको बुलाने जाएगा किस कारण से वो आएंगे, क्या कहकर बुलाऊंगा उनको, किस वजह से बुलाऊंगा। कंस बोले मैं प्लानिंग में कर चुका हूं, तुझे कुछ बोलना नहीं होगा, काट दे देना, फर्स्ट क्लास इन्विटेशन काट देता हूं, काट देना ना, वो अभी बालक अवस्था में है, उनके संरक्षक नंदा आदि वो लोग क्या छोड़ेंगे उनको, ना नहीं उनको ही बुलाना, उनको अकेले थोड़ी लाना, उनके लिए भी काट ले जा। और आपको पता है ना मैं अभी इतनी बड़ी फेस्टिवल कर रहा हूं, धनुर्यज्ञ का जो विशेष एनुअल फेस्टिवल मथुरा में होने जा रहा है, इस बार जो फेस्टिवल होगा अभी तक ना हुआ ना हुआ था, ना भूतो ना भविष्यति, इतने हाई बजट पेश करके इसी प्लानिंग में किया हूं, इस बार करूंगा, तो इसके लिए उनको वीआईपी पास है, उनको बुलाना। और आपको पता है ना उनको बुलाने कर मैं क्या करूंगा, तुझे तू मेरा मित्र है तुझे बता देता हूं, आते ही मालूम है कुबल्यापड़ को पहले ट्रेंड अप कर चुका, वहीं आते ही गेट पर ही उनका समाधान हो जाएगा, बाय चांस उससे बच निकले, पंच महामल्ल है वज्र का, ऐसे ऐसे मचल देंगे उनको। अगर बाय चांस उससे निकले, एनुअल फेस्टिवल तो इसलिए ही कर रहा हूं, धनुर्यज्ञ स्वयं धनुष का निशाना बनाऊंगा उनका, शिव धनुष में हमेशा उनके एरिया में जाकर से मर के आते थे, अभी यहीं बुलाकर मरवा दूंगा। अक्रूर जी सुन सुनकर बोले महाराज आप इतने चतुर हैं, आपने मृत्यु को आपने जो दुर्भाग्य को टालने के लिए आप इतने बुद्धिमानी से काम करते हैं तो बड़े सराहना योग्य है आप, लेकिन महाराज बात तो ये एक सही है कि हम कितने भी प्रयास कर लें फल देने वाला तो भाग्य ही है, कभी कभी हम खूब प्रयास करते हैं लेकिन फल उल्टा हो जाता है, क्या पता क्या होगा। संकेत के द्वारा अक्रूर ये कहना चाहते थे कि अभी तक तो तू भेज रहा था, अभी काल को खुद बुला रहा है, तो मैं आपका काल पूरा होने जा रहा है। इसीलिए संकेत में बोल रहे थे कि हम तो प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन भाग्य में क्या है क्या पता। तो साक्षात मृत्यु को तू बुला रहा है, हम तो दूर में थे, वो तो पास बुला रहा है, तब तो मुझे लगता है कि आपका परमार्थ पूरा होने जा रहा है। तो लो आप मरो, जो मरे सो मरे, तो मुझे भेज रहा है, मुझे यही बड़ी प्रसन्नता है, लेकिन इसको बोल नहीं रहते। कंस ने सोच रहा है वो इसे नीति के बात क्यों मुझे कर रहा है, उनको पता नहीं मैं कितनी पराक्रमी हूं, शायद वो भी जाना नहीं चाहता, डर रहा है शायद क्या करूं उसको। तो बोले उनको इससे अच्छा गाड़ी दिखाऊं, जाने के लिए मन करेगा, अभी तक तो इसी से गाड़ी चढ़ रहा है, साइकिल के पुराना मोटरसाइकिल चढ़ के आता होगा। तो बोले देखो ज्यादा दूर तो नहीं, ऐसे 10-12 किलोमीटर है, लेकिन मैं तुझे भेज रहा हूं सुपर, मेरा गाड़ी देखकर स्पेशल रॉयल कार, मैं भी यूज नहीं किया, बिल्कुल ब्रांड न्यू कार, अभी तक ड्राइवर बैठा नहीं, गाड़ी अभी तो खुलेगा, रिबन काटेगा तूने, ऐसे न्यू कार दे रहा हूं तुझे। तो ऐसे गाड़ी, नया गाड़ी दिखाने से अक्रूर जी साथ बोलेंगे अच्छा मैं पहले चला कर देखूंगा, मतलब कार तभी नहीं था, रथ था, ऐसे नूतन स्वर्ण में बना हुआ रथ जिसमें वायु वेग से चलने वाले अश्व जुड़े हुए थे, इतने सद धज कर गत को बुलाया, बिल्कुल ब्रांड न्यू बुलाई, ए आपके लिए। कंस ने मन में सोच रहा है कि अक्रूर जी ने इतने बढ़िया रथ अश्व देख करके वो सोचेगा चलो मेरा सौभाग्य है, नए गाड़ी में बैठूंगा, चलो भले एक दिन में आधा 2 घंटा के लिए क्यों ना हो, पहले तुम ओपनिंग तो मैं करूंगा। लेकिन सच्चाई ये था, कंस के अंदर भी प्रकृति उनको काम करा रही थी, क्योंकि जिस रथ को जिस गाड़ी को अभी तक कंस ने चढ़ा है, उनके प्रसादी में भगवान थोड़ी चढ़ेंगे, भगवान तो भगवान है, उनको नूतन वस्त्र चाहिए, नूतन गाड़ी चाहिए, नया कार चाहिए। तो जिस कार में भगवान बैठकर आएंगे तो उसके लिए तो नया कार देना पड़ता, कंस जानबूझकर नया गाड़ी दे रहा है उनको, अक्रूर का कोई मतलब नहीं था, अक्रूर तो इसी उनको बोलता तो पैदल में चले जाते बेचारे, उनको तो बहुत इच्छा था जाने का। जो भी हो, कंस ने उनको दिलाया नया गाड़ी, और उसी आधी रात को उन्होंने गए, रात भर में उनको नींद नहीं आया खुशी के मारे अक्रूर जी को, सुबह होते ही गाड़ी जाकर के अपने गेट के सामने पार्क कर गया रथ। अक्रूर जी इतने वेगवान हाई स्पीड वाली कार में बैठ करके चले, ज्यादा दूर नहीं, 12-14 किलोमीटर का दूरी था। एक बार यल्ली मॉर्निंग निकले थे, निकले लेकिन जब से मथुरा से निकले जैसे उद्धव जी को काट मार गया, अरे भाई रथ खैर घोड़े के द्वारा खींचे जा रहे रथ, उनको कोई चलाए तो चले ना, और अक्रूर जी रथ में बैठे घोड़ा को चलाए, घोड़ा चलने के लिए तैयार, उनका उत्साह खत्म, टेम्पर डाउन, पूरा गियर ब्रेक छोड़ करके स्टीयरिंग छोड़ कर बैठ जाते थे, वो उनको सोच में पड़ जाते थे क्या मैं सच में जाऊंगा, मेरा क्या ऐसे भाग्य है कि मैं उन प्रभु का दर्शन कर पाऊंगा, क्या मैं इतना जाप तप पुण्य इतने कोई दान दक्षिणा किया हूं ताकि मुझे भगवान के दर्शन हो जाएगा। मैं तो सुना हूं बड़े बड़े जोगिंद्र मुनिंद्र देवेंद्र भी हजार हजार साल तक जप व्रत नियम आदि करने के बाद भी उनके दर्शन नहीं पाते हैं, तो मेरा कौन सा इसके मेरिट पॉइंट है, मैं उनका दर्शन पा लूंगा, सच में क्या मुझे दर्शन देंगे, ऐसा सोच करके हताश बैठ जाता है। फिर सोचता है नहीं, यद्यपि मेरा तो कोई गुण नहीं है लेकिन वो तो पतित पावन है, असहाय के सहाय है, मेरे जैसे दुखी को मेरे वो अंतर्जामी है, मेरे अंतर्गत तो जानते होंगे, मुझे अवश्य दर्शन देंगे। तब फिर चलाता है गाड़ी, तब थोड़ा सा मन में आता, तब फिर रुक जाता है, अरे मैंने क्रूर कंस का सेवक हूं, उनके दूत हूं, उनका बन करके उन्हीं के काम करने के लिए जा रहा हूं, और उनके कितने कपट खल योजना है, उनको मरवा देने का योजना, इसी योजना के सहायता करने के लिए जा रहा हूं। क्या उनको पता नहीं हो तो अंतर्जामी है, तो इसे जान करके मुझे दर्शन देंगे न रुष्ट होंगे, निकाल देंगे मुझे न मुझे दंडित करेंगे, ये चिंता आता है। नहीं 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 नहीं, मैं तो अपरजंत उनको ही मेरे पति रूप में माना हूं, उनको प्रभु रूप में माना हूं, भले बाहर से ऐसे शो करता हूं, अंदर से तो मैं उनका ही हूं। तो मेरे मन का बात अवश्य जानेंगे, मैं जाकर के मेरे ईप्सित प्रभु के चरण में गिर जाऊंगा, जरूर मेरे सर के ऊपर अपने हाथ रखेंगे, कर कमल रखेंगे, मुझे आलिंगन करेंगे, मुझे चाचा कह करके पहचान जाएंगे, पुकारेंगे मुझे, यद्यपि मुझे देखे नहीं, अभी मैं उनको देखा नहीं, लेकिन वो तो सर्वद्रुक हैं, जरूर मुझे पहचान जाएंगे। ऐसे मन में बहुत चिंता करते करते कभी एक्सीलेटर के ऊपर पैर रखता है, कभी छूट जाता है, छूटता, क्या करे, गाड़ी हाई स्पीड का है लेकिन चलाने वाला तो चल नहीं रहा, ऐसे रुके बंद होता है, चलते रुके चलते रुके, वृंदावन के पास में जब पहुंचा, जंगल के पास में, तब जंगल को देखा इतने सुंदर, और ग्राउंड में नजर पड़ा हजारों गायों की पदचिन्ह, गोस पदचिन्ह देखा। बोला मैंने सुना हमारे प्रभु भगवान गोचारण कर रहे हैं, इतने सारे गाय चरा रहे हैं। तुरंत इस गोपद चिन्ह के पीछे देखा कि बहुत सारे बालकों के, गोप बालकों के पद चिन्ह है, और उन पद चिन्ह के बीच में भगवान के पद चिन्ह तो सामान्य नहीं है, बिल्कुल फोटो प्रिंट करके उठा हुआ है, सब ध्वज ब्रज अंकुश आदि चिन्ह बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है। जैसे देखा तो रथ से धड़ाम गिर करके पड़े और उसमें लोटपोट होने लगे, स्वयं लेकर के मुथा में लगाए, सारे शरीर में मले उस रज को। अब वृंदावन प्रवेश करने से पहले ही वृंदावन रज को प्रणाम करते, सारे रज को शरीर में लिपटते, उनको रोते पुलकित होते हुए। सच बात तो ये है, अगर ये गाड़ी पक्का ना होता और अश्व इतने वेल ट्रेंड ना होते तो वो वृंदावन पहुंच नहीं सकते थे गोकुल ना, क्योंकि वो गाड़ी तो छोड़ दिए थे अभी, अब पैदल में चलने लगे, वो घोड़े उनके पीछे पीछे चलते चल कर आते थे वो गाड़ी छोड़ दिए, जब से जंगल में पड़े अब ये पद चिन्ह हो सके आगे, अरे वो भी है वो भी, बस एक एक पद चिन्ह के ऊपर पड़ते उठते गिरते लुटते वो आते गए, अब गाड़ी नहीं आए। 12 किलोमीटर रास्ता को सुबह निकले थे, शाम को आकर पहुंचे, पूरे 12 घंटा लग गए, हाई स्पीड गाड़ी था, अब स्पीड हिसाब से देखो 1 किलोमीटर पर आवर अब आप अभी जानते हैं कि वृंदावन अभी तक तो जितने आए हैं सब वन वे, कोई रिटर्न तो गए नहीं। अब अक्रूर जी भी पहले बार वृंदावन के अधिदेव श्री वृंदा देवी देख रही हैं, आहा, पहली बार मथुरा से कोई व्यक्ति आया जो इतने भद्र है, इतने भक्त है, हरि भक्त है, उनका भाव कैसा है। अभी तक कंस जिन को भेजा था सारे बदमाश कैसे आए थे, सबका सफाया हुआ, लेकिन ये तो आते ही वृंदावन प्रवेश करते ही मेरे रज को लेकर के लोटपट हो रहा है, पुलकित हो रहा है, रोता रहता है, उनका कैसे ऐसे हो सकता है। वो तो जो ब्रज रज के शरण में गया उसका तो मनस्काम पूर्ण होगा ही, क्या करेगा वो। कंस महाक्रूर था, इतने क्रूर स्वभाव वाला कंस भेजा था अक्रूर को, लेकिन आज अक्रूर जी इसी कंस के द्वारा भेजे गए प्रथम व्यक्ति बनकर के आए जो ब्रज धरा का सर्वस्व छीन लिए, ब्रज के प्राण को हरण कर लिए, अपहरण कर लिए, उन्होंने कर लिए, क्योंकि ब्रज के रज के शरण में गए। इस प्रकार शाम के समय में अकुर जी जब आके पहुंचते हैं, अभी भगवान गोप बालों के साथ गाय ला करके गोष्ठ में रख करके गोदहन करके जा रहे थे वापस, भगवान को दर्शन किए पहली बार, केवल अभी सुने थे, शास्त्र में पढ़े थे सुने थे, पहली बार देखे इतने सुंदर श्यामल कांति पीत वस्त्र मयूर मुकुट शिवच्छ कुस्तुभ आदि सब देख करके समझ गए निश्चित यही है मेरे प्रभु निश्चित। दौड़ करके गए धड़ाम जाकर दंडवत प्रणाम गिर पड़े उनके चरण में। पहले बार दोनों दोनों को भेंट कर रहे, जैसे अश्रुपूरित होकर के चरण में लोट पड़ गिर पड़े तो भगवान ने तुरंत उनको उनके सर में अपने हाथ रखे, कर कमल स्पर्श किए उनके सर में, फिर उनको उठा करके आलिंगन किए। अरे वो तो बालक थे, वो तो बड़े थे अक्रूर जी का आंख से इतने प्रमाण में अश्रु प्रवाहित हुआ, कृष्ण के अलग के भीग गए। और पास में बलराम जी खड़े थे, अब उनसे छूट करके उनको प्रणाम किए, उन्होंने भी उठा कर गले लगाए। अब उनको खींच करके लिए भवन में लेकर के। अक्रूर जी कभी ऐसा स्वप्न में भी नहीं सोचे थे कि उनको इसी प्रकार आतिथ्य मिलेगा, क्योंकि ये तो अतिथि थे नहीं, वो तो दूत थे, अतिथि नहीं थे, फिर कंस का दूत थे। एक दूत को जिस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए उनको इतना ही आशा था, लेकिन ये अतिथि नहीं है, एक दूत है, बात कहने के लिए उनका पास मौका भी नहीं मिला। कृष्ण बलराम ने चाचा जी कह करके इतने प्रेम से फुकारा, इतने प्रेम से गले लगाया, इसे सुंदर व्यवहार किया, इतने सुंदर मधुर वचन कहे कि वो तो मोहित हो गए, भूल गए कि मैं कौन हूं किस लिए आया, उसे भूल गए। गौर उनके हाथ को पकड़ करके श्री बलराम जी ने खींच खींचे नंद भवन में ले गए। नंद महाराज आकर के बड़े प्रेम से गले लगाए उनको, अक्रूर जी कैसे हो, गोदान किए उनको, बोले मैं क्या आपको पूछूं, आपके कुशल मंगल पूछना मैं ठीक नहीं मानता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं हमको दूर में थोड़ी रहते हैं, पता था हमको सब डेली भी मैसेज मिलता है, जैसे कोई कसाई के घर में कोई भेड़िया पाल के रखे, जानते ना भेड़ को कोई कसाई किस लिए पालता है, काटने के लिए, अब जब मर्जी तब काट लेगा। तो आप तो कंस जैसे कसाई के भेड़िए हो, तो आपके कुशल में क्या पूछूं, वो कुशल क्या होता है, कुशल तो यही होता है कि जब होगा उसका किस मुहूर्त में होगा आपके गला काटेगा, आपको कुशल क्या पूछूं पूछना ही बेकार है। और बाकी आपके जो यदुवंशी किसी का पूछना ही बेकार है, ठीक है भले कि आप जो भी किसे हो कि मैं नहीं पूछा, तो आप आए हमारे लिए बहुत बड़ी आनंद की बात है। अभी महाद्वादशी व्रत किए थे, उन्होंने सुबह सुबह द्वादशी पारायण भी नहीं किए थे, अब चलते चलते बेचारे भूख प्यास मिट गया था, जाके पहुंचे शाम तक। भगवान ने देखे कि चाचा जी बहुत भूखे मांदे हैं, तुरंत उनको संकेत किए, उनके रथ गाड़ी पार्किंग में लगा दो, और दूसरे लोग बोले हाथ पैर धुला दीजिए, फ्रेश हो जाइए थोड़ा, अब बहुत सुंदर उत्तम उत्तम द्रव्य ला करके उनको परोसे खाने देने के, बैठा करके खूब खिलाया, स्वयं बैठ करके कृष्ण बलराम प्रसाद खिलाने के बाद उनको चंदन और माला दिए, सुगंधी चंदन पुष्प माल्य में दिए, और फिर बोले कि थक गए अब थोड़ा आराम कीजिए, रात हो रहा है। वो तो कुछ बोलने का चांस ही नहीं मिल रहा, इतने सुंदर आतिथ्य और कोई सोच भी नहीं रहते, कभी उनके इस आतिथ्य मिला ही नहीं था, पहली बार इसी गोपपुर में आकर के। और जिनको आपने प्राण के ईश्वर करके मानते थे, आपने को केवल एक पतित सेवक करके मानते थे, आप बेड में लेटे ही कि नहीं देख रहे हैं, दोनों तरफ से दोनों ईश्वर आके बैठ गए, एक एक पैर को अपने अपने अंक में ले लिए, अब दबाने लगे। अब उनको मना भी तो नहीं कर सकते, किसका माने थोड़ी, कृष्ण कुछ करे उनको रोक भी नहीं सकते, नीति जुक्ति हो तो नहीं, चाचा जी आप बड़े हैं, हमारे पूज्य हैं, हमारे सेव्य हैं, हम आपकी सेवा करेंगे, थके हुए हैं आपने, हमारा ही धर्म है, हमारा ही हक है, आपके पद संभान करेंगे, वो करने लगे। और क्रूर जी केवल देखते थे और रोते थे, कितने सुंदर है, कितने उदार है, तो केवल देखते ही थे। अब कुछ बोलने का नहीं बनता था, अब पद संवहन करते करते पूछे, चाचा जी खैर आना किस लिए हुआ? अब चांस मिला बोलने का। कंस ने तो केवल कहा था कार्ड दे देना, पूछने से बताना कि बड़े फेस्टिवल हो रहा है, आप दोनों आओ, और बाकी लोग पूछेंगे आप सभी भी आओ, टैक्स जमा करो, भेंट लेकर के सब आओ, बाकी कुछ मेरा जो कुटिल मंत्रणा है किसी को नहीं बताना, शायद डर जाएंगे, भाग जाएंगे, ना आए। लेकिन इतने आतिथ्य पा करके, इतने कृतकृत्य होने के बाद वो कुछ छुपा कर कोई थोड़ी रख पाएगा, बात पूरे हृदय खोल करके सारे बता दिए। कंस का जो मनभाव था सारे बता दी, ए टू जेड, ऐसे ऐसे करना चाहता है, ये करना चाहता है, ये सारे इंफॉर्मेशन को सुन करके दोनों भाई ने हंस दिए। बोले चाचा जी कोई बात नहीं, मामा जी का टाइम आ रहा है, कोई बात नहीं, आप किसको नहीं बताना, आप ये बात किसको नहीं बताना, कोई घबराएंगे, आप आराम कीजिए और हम बता देंगे, पापा जी को हम बता देंगे, डैडी को हम बता देंगे कि इनविटेशन आया, कार्ड दे देंगे, वो आपने ड्रिंक करके आप सो जाए, थक गए, ऐसे कहकर उनको सुला करके उठ गए। और गुरु जी को नींद ही नहीं हुआ रात भर, बोले अरे इतने भयानक खतरनाक सूचना मैंने उनको दिया, काल सुबह मरवाने के लिए उनको ले जाने के लिए आया हूं, उनको मारने के लिए विशेष तैयारी चल रहा है, और उनके लिए मैं स्पेशल गाड़ी लेकर आया उनको मरवाने के लिए, ले जाने के लिए, बता भी दिया उनको, हंस हंस करके उड़ा दिया उसको, कोई चिंता नहीं, बोले किसी को बोलना नहीं, कोई बात नहीं, कैसे ऐसे हो सकता है, ये दोनों बच्चे अरे कुछ योजना करते भाग जाने के लिए, कुछ कैसे बचूं, कुछ को उपाय कर, नथिंग, कोई चिंता नहीं, बोले आप सो जाओ हम जा रहे। अक्रूर को सोचे भी सोचना नहीं बनता, सारी रात वही सोच में रहा उन्होंने। और दोनों भाई जा करके पिताजी के बताए, बाबा जी ये कार्ड आया है और मामा जी ने भेजे हैं, और बहुत बड़े उत्सव कर रहे हैं, वार्षिक उत्सव, और हमको तो स्पेशल इनविटेशन गाड़ी भेजे हम लोग के लिए, हम दोनों के लिए, और आप सभी के लिए भी निमंत्रण आया है, आप लोग को सब भेंट लेकर के जाना है, दूध दही आदि आदि जो भी भेंट सब, और लाखों लाखों लोग आएंगे सभी से। अब तो तुरंत नंद बाबा और जितने सब मुखिया लोग है गांव में, तुरंत मीटिंग बैठाए, मीटिंग बैठा करके सबके सामने राज आदेश सुना दिया गया कि कल सुबह सबको चलना होगा, भले राजा का आदेश से जाए न जाए, इसे हमेशा टैक्स देने जाते थे दूसरी बात था, लेकिन जाने के लिए सचमुच सब तैयार हो गए। क्यों? क्योंकि ये दोनों जाने के लिए तैयार हैं, प्राण जाए और शरीर ना जाए ऐसे कैसे हो सकता है, ये दोनों जाने के लिए गाड़ी आ चुका है, वो जाने के लिए तैयार है। अभी तक तो मथुरा से जो आया गए नहीं, लेकिन वो उनके साथ जाने के लिए तैयार, अब तो हमको जाना ही पड़ेगा, भले टैक्स देने के लिए हो चाहे कुछ भी हो। अब सारे गोप ने बड़े बूढ़े छोटे बालक से लेकर के जो ग्वाल वाल बछड़े चला वो भी तैयार हो गए, हम भी चलेंगे। ये तो सारे वृद्धा गोपियों को खबर कर दिया गया कि सब भेंट सामग्री तैयार करो, दूध दही मक्खन आदि मिल पर तैयार करो। उन लोग ने सारी रात इस काम में लग गए, बड़ी बूढ़ी गोपियों ने, और जितने सारे गोप थे युवक बच्चे आदि सब अपने अपने अस्त्र शस्त्र बजाने लगे। बोले कि हो ना हो, सबको तो पता है कंस के विचार किस प्रकार के आदमी है, अगर हमारे लाला के ऊपर कुछ योजनाओं करे, कुछ इसे व्यवस्था करे, तो हम भी उनके पास होने वाला, हम पहले अपने जान दे देंगे, जी जान लगा देंगे। इसलिए पूरा सच धज करके कसम खाकर वो भी निकले। अगर कुछ ऐसा घटना हो जाए तो आशा नहीं करते थे इतने बड़े उत्सव है, लाखों की भीड़ होगा, सभी के सामने कौन सा ऐसा शायद नहीं करेगा। अगर कभी करे तो हम क्या क्या एक्शन लेंगे उसका भी उन्हें योजना बना रहे थे, अपने मन में तैयारी हो गई थी। सारे सभी अपने अपने छकड़ा सजाने लगे, तैयार हो गए। रात भर ये तैयारी चलती है, रात में सूचना तो उनको भी मिल गई थी, जितने बालिकाएं थे। अब उन विचारों की तो दुख कहना जा जाए, सभी लोग तो दुखी हैं, सभी दुखी हैं कि कृष्ण बलराम चले जाएंगे, भले चार दिन के लिए जाएंगे उत्सव के लिए, लेकिन चार दिन तो चार युग की तरह लगता है, चार दिन चार युग के जैसा लगता है। माता यशोदा माता रोहिणी तो उस शाम से लेकर दूसरे दिन सुबह तक जब तक गए तभी तक हर मिनट में इतने चिंता कि नीलमणि जाएगा, भले चार दिन के लिए क्यों ना हो, उनको इस समय वो चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, ऐसा जरूरत है, ऐसा चाहिए, क्या क्या व्यवस्था सामग्री करके सब देती है चार दिन के लिए। और जितने सारे और गोप हैं सबको बुलाती, नहीं देखो ऐसा करना, उनको ऐसे ध्यान रखना, बच्चे हैं, गवार हैं, पढ़ लिख नहीं है, अब नगर में जा रहे हैं, यहां ऐसे व्यवस्था होगा, ये होगा, सब सावधान कर देना चाहती है। उनको तो ही आशा था कि उत्सव देख करके वापस आ जाएंगे, सभी जा रहे हैं उनके साथ आ जाएंगे वापस। लेकिन बेचारे जो बालिकाएं थी, कुमारी थी, उनका मन में मत ये बात नहीं बैठ रही थी कि कृष्ण एक बार जाएं टाउन में, सिटी में जाएं फिर वापस आएंगे, नहीं लगता। क्यों वापस आएंगे, उनको तो नहीं लग रहा था। बोले वो जानते हैं उनको थोड़ा बहुत कृष्ण के स्वभाव को, बोले वहां टाउन में सिटी में जो कुमारियां होंगी वो तो सब पढ़ी लिखी बहुत चतुर होंगी, सब लैपटॉप भी चलाते हैं, फोन भी चलाते हैं, हम लोग तो गवार है, पढ़े लिखे नहीं है, जानते नहीं कुछ, ढंग से ड्रेस पेंट भी नहीं कर पा रहे हैं, श्रृंगार भी नहीं कर पा रहे हैं, और बाकी इतने बोलबाल भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग तो इस मामले में बहुत एक्सपर्ट है। अब एक बार कृष्ण उनके चक्कर में आ जाए तब वापस आएंगे, हम नहीं आशा करते, लेकिन उनके मन की बात कौन समझे, उन विचारों की नींद नहीं, वो बड़े दुखी हैं, रो रो करके वो मन में केवल बोलते हैं पागली नंद बाबा माँ सब राजी कैसे हो गए उनको भेजने के लिए, उनको पता नहीं लगता कंस कितना क्रूर है, निष्ठुर है, किस लिए बुला रहा है, वो राजी कैसे हो गए, और ये सारे बालक भी कैसे उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गए पता नहीं। लेकिन क्या करें, सब तो तैयारी तो हो रहे हैं जाने के लिए, रो रो करके उनके मन में आया रोकने से फायदा नहीं, कुछ करना पड़ेगा। सारे एकजुट हो गए, इकट्ठे हो गए, खूब मीटिंग किए, मीटिंग करके गाली देने लगे, बोले कौन बोलता है अक्रूर है, तो एक नंबर के क्रूर है, हमारे सर्वस्व को अपहरण करना चाहता है आकर के, अक्रूर है, कैसे अक्रूर हो सकता है, महाक्रूर है होता। उनको गाली देने लगे, गाली देने लगे ब्रह्मा तक को, बोले हे विधाता आप इतने निष्ठुर कैसा है, क्यों हमको कृष्ण से मिलाया, अगर नहीं मिला तो हम तो ठीक थे जैसे थे, उनको लाया क्यों और ऐसे लगाव लगाया और अभी फिर निकाल दिया, हमारा मन नहीं भरा है, किसी व्यक्ति के साथ किसी व्यक्ति को संयोग से मिलाता है वो इतने प्रेम में संबंध हो जाता है और उनका संबंध पूरा पूर्ति नहीं पहले से फिर विलग कर देता, ये कि विचित्र स्वभाव है विधाता का, ये तो बुद्धिहीनता है। कृष्ण जैसे वस्तु को जो एक बार देख ले, उनके रूप को एक बार कोई देख ले तो दूसरा कोई वस्तु उनके समान अनुरूप है जिसको देखेगा कुछ होगा देख करके, तो हमारा आंख क्या देखेगा, आंख अंधी हो जाएंगे सब, जो उनको देख चुके हैं फिर तो और कोई देखने के लिए बनेगा ही नहीं, फिर आंख क्या होगा, आंख की दशा क्या होगा। बड़े बिचारी दुखी होकर के सारी रात मीटिंग करते रहे, गाली देते रहे उनको, उनको रोते रहे। बोले सुबह सुबह जब देखे सब तैयार हो गए, जल्दी जल्दी स्नान करके बड़ी भोर से चलने के लिए, बोले अरे यार कुछ इसे रोने से धोने से काम नहीं चलेगा, कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। कुछ बोले एक्शन लेंगे घर वाले मारेंगे, मीटिंग कुछ करेंगे नहीं, ऐसे ही तो मर जाएंगे, तभी मारेंगे, इसे क्या बचते क्या, कृष्ण चले जाने के रहेगा क्या हमारा, चलो कुछ करते हैं। सारे निकले सुबह सुबह, सारे गोप बड़े बूढ़े युवक जल्दी जल्दी जमुना स्नान करके अपने अपने गाड़ी तैयार करके निकल पड़े। जाते समय नंद बाबा अक्रूर जी को बोल दिए, अक्रूर जी आपका तो हाई स्पीड कार है, आप थोड़ा देख करके आना, मथुरा के आउटस्कर्ट में मिलेंगे वहाँ गेट पर, हम वही वेट करेंगे, चाहे आगे पहले चले जाओ ना, हम तो थोड़ा लेट में जाएंगे, देख करके आप चले आएंगे। वो जो निकल पड़े सारे गोपियों ने दौड़े दौड़े आए, कृष्ण बलराम रथ में सवार हो चुके थे, आकर के देख बोले अरे हम दूसरे को विधाता को अक्रूर को इनको क्यों गाली दे रहे थे, ये देखो ना नंदन नंदन को स्वयं जाके गाड़ी में बैठ चुका है, अरे हमारा कोई चिंता ही नहीं है उनको, उनके पता नहीं हमारा क्या दशा होगा, कुछ बिन पूछे बिन सोचे जाके बैठ गया गाड़ी में, अब तो वही थक हो गए, बोले गाड़ी बैठ गया अब क्या करेंगे, वही जाके अपने आप बैठ गया, हमसे एक बार भी पूछता कि मैं जा रहा हूं कुछ कर रहा हूं, कुछ नहीं बैठ गया जाकर, अब तो गया नहीं। तो बोले अरे अब दुखी होकर मरोगे, जो कुछ तो अटेम्प्ट करो ना, क्या अटेम्प्ट करे, चलो कुछ स्ट्राइक करते हैं। तो आकर के रथ जो रास्ते में जाएगा है कि सड़क बंद, रोड रोको आंदोलन कर दी, हजारों संख्या में गोपी सारे सड़क में आकर सो गए, गांव के एक ही रोड था, रथ जाएगा तो जाएगा कैसे, इतने सारे बालिकाएं सोए। अब अक्रूर जी ने रख रख दी, बोले अब देखे कि पीछे मुड़ करके पैसेंजर की ओर, भाई ये क्या है भाई, अपने गांव वाले कुछ बोलो उनको, ये लड़कियां सारे आकर के सो गए रोड पर, रास्ता रोड रोको छोड़ते नहीं। तो कृष्ण ने देखे सब गोपी अनुभव, कृष्ण को देख रहे थे, अक्रूर जी भी कृष्ण को देख रहे हैं, कुछ तो करो, गाड़ी कैसे आगे बढ़े। तो कृष्ण ने बोले कि आप लोग उठ जाइए, रास्ता छोड़ दिए, मैं मथुरा जा रहा हूं, मैं मथुरा जा रहा हूं, आप रास्ता छोड़ दीजिए, मैं मथुरा जा रहा हूं। इस वाक्य उनके श्रुति में प्रवेश किया, केवल इतना सुने बस, अभी तो जिंदे बैठे थे, देख रहे थे, रो रहे थे, ठक 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 सब मर गए। जा अक्रूर जी बोले ये तो और भयानक केस हो गया, अब तो कम से कम जिंदे थे, समझा हो जाकर के समझता, कहते स्ट्राइक कल अप हो जाता हम जाते, अब क्या होगा, इतने सारे डेड डेड बॉडी के साथ में। अब फिर कृष्ण को देखे अब क्या हो गया, अब क्या करें, क्या कर दिया उनका। कृष्ण बोले कोई बात नहीं, तब बोले मैं वापस आ जाऊंगा, मैं शीघ्र ही मथुरा से वापस आ जाऊंगा। जब ये बात फिर कान में आया, फिर सब जग के खड़े हो गए, छोड़ दिए। अब आप लोग को सामने प्रश्न है, कृष्ण मथुरा जाने के बाद इस मृत गोपी जो जीवित हुए, उनका जो प्राण जो जीवन वो क्या था, हाँ क्या, करेक्ट, कृष्ण के जो वाणी कि मैं वापस आऊंगा, यही उनका जीवन था, बाकी उनका सब प्राण कृष्ण लेकर चले गए थे, केवल ये वाणी छोड़ गए थे। उसी के आशा में वो पड़ी रहे। अब इतने लेट में अक्रूर जी रथ चलाए, अक्रूर जी के रथ के पीछे घोड़े की टापू से उड़ते हुए धूल को देखते हुए सारे ब्रज गोपिकाएं एक स्वर से रोते रोते हुए करके आते हैं। भागवत में इस पद को लिखते हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं एवं ब्रुवाणं विरहातुराभृशं ब्रज स्त्रिय कृष्ण विषक्त मानसा विसृज्य लज्जांगुरुदस्म स्वरं गोविंद दामोदर माधवेति। बोलिए गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर गृहे गोपवधू कदंबा सर्वे मिलित्वा समवाय जोगे पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविंद दामो धर्माधवेति, गोविंद दामो धर्माधवेति, गोविंद दामो धर्माधवेति। मंदार मूले वदनाभिरामं बिंबाधरे पूरित वेणुनादं गोगोप गोपी जन मध्य संस्थं गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। इस प्रकार के रुरुदु सुसुरंग रोते रोते इसे सुर में केवल गाते रहे जब तक रथ ना दिखाई पड़ा, धूल दिखाई पड़ रहा तब तक, जब सारे ओझल हो गया, वही पुनर्वार मूर्छित हुए, कैसे कैसे उनके घर के उनका विवाह का आकर जैसे कैसे उठाकर बालिकाओं को सब लेकर के गए, ये स्थिति था उनका। तो अक्रूर ने लेट हो गया गांव से निकलते निकलते, अब काल रात से तो जो उनको चिंता मन में पड़ा था अभी तक वो चिंता ग्रास है। गाड़ी चलाते हुए अक्रूर जी सोच रहे हैं कि देखो मैंने तो कभी स्वप्न में सोचा नहीं था कि मेरे जैसे व्यक्ति जो जीवन भर कंस की नौकरी किया, इसे कुपुरुष का राक्षस का वेतन भोगी दास मैंने हूं, उन्हीं के काम करता हूं, मैंने उनके आज्ञावाहक हूं, केवल इतना नहीं उन्हीं के प्लानिंग को पूरा करने के लिए, क्या प्लानिंग, कृष्ण बलराम को और सारे गोप गोपियों को सारे अच्छे लोगों को मरवा देना है, ये उनका जो सुंदर प्लान है, इसी प्लान में मैं भी एक भाग लेने वाला हूं ना, मैं तो आया हूं लेने के लिए। उन्हीं के गाड़ी लेकर के उन्हीं के कार्य को सफल करने के लिए, उन्हीं के इच्छा को पूर्ति करने के लिए मैं आया हूं, मेरे प्रति ऐसे व्यवहार, और तो और मैं उनको बता भी दिया। बोले भरे ये बच्चे हैं, बालक का तो बालक ही स्वभाव होता है, मैं सुना हूं कि साक्षात हरि अनंत उन्होंने धराधाम में प्रकट हुए हैं असुर विनाश करने के लिए, कंस बद्ध करने के लिए, लेकिन जब हरि अपने पावर में आएंगे, पोस्ट में आएंगे तब करेंगे, अब तो बच्चे हैं, मैं कैसे भगवान के भक्त हूं, सेवक हूं, मैंने स्वयं ये दोनों बालक रूप में दोनों कोमल से किसले नवीन किसले जैसे कोमल बालकों को अभी तक केवल 10-11 साल के हैं, उनको मैं स्वयं गाड़ी में बैठाकर कालमुख में ले जा रहा हूं मरवाने के लिए, कितनी बड़ी धूतता है मेरा, क्या करने जा रहा, मन में खूब उनका शंका हो रहा था, गाड़ी ऐसी भी नहीं चल रहा था जाते समय भी, सचमुच मैं उसको ले जाऊंगा, कंस क्या करेगा उनका, बहुत भारी प्लानिंग करके रखा है, देखते ही क्या करेगा, कैसे व्यवहार करेगा, कैसे करेगा, सोचते सोचते विचारे अश्रुपूरित नयन, गाड़ी चल नहीं रहा है, दोपहर हो गया, गांव से बॉर्डर पहुंचते ही आते समय तो इतना 1 किलोमीटर पर आवर स्पीड में आए थे, जाते समय भी वही हाल, चल नहीं रहा गाड़ी। दोपहर हो गया, जमुना किनारे पहुंचे तो बोले कि देखो दोपहर हो रहा है, मैं थोड़ा दोबारा नहाकर, बहुत गर्मी लग रहा है, गर्मी लग रहा है क्योंकि टेंशन है, रात भी सोया नहीं। कृष्ण बलराम बोले चाचा जी जाइए, आप स्नान करके आए, गाड़ी में बैठे, क्या करूं, यहाँ कोई पेड़ पौधे तो नहीं है, नहीं तो कोई पेड़ के नीचे पार्क कर देता गाड़ी, आप ये रथ में बैठे रहिए, मैं बस जल्दी से स्नान करके संध्या करके आ जाता हूँ। हाँ चाचा जी अवश्य जाइए, हम बैठे, हम जाकर आ जाए। चाचा जी के अंतर की इच्छा कुछ समझ गए थे उन्होंने, किसलिए बड़े दुखी है, चिंतित है, अब स्नान करने गए, चिंता विषाद से युक्त होकर के जाके अपने वस्त्र जमुना किनारे में पुलिन में रखे, रख करके गमछा पहन करके पानी में उतरे, प्रणाम करके जमुना जी को पानी में उतर करके डुबकी लगाए। जैसे डुबकी लगाए उनको लगा आंख खुल गया उनका, देखे कि दोनों बालक कौन के सामने। बोले क्या हो ना हो, दोपहर की समय है, उनको भी जमुना जी में स्नान करने का मन में इच्छा हुआ होगा, मेरे पीछे पीछे आ गए होंगे, मैं देखा नहीं सर, लेकिन मेरे पीछे पीछे उतर के आगे मुझे बताया नहीं, घोड़े खाली छोड़कर रथ लेकर कोई नहीं चला नहीं जा कहीं इधर उधर, उठ करके रथ को देखना चाहे कि घोड़ा ठीक ठाक है कि कहीं चले गए, बालक तो इधर आ गए, पूर्ण मान गए कि बालक तो मेरे पानी के अंदर है इधर। उठ करके जब रथ के और पीछे मुड़ कर देख रहे हैं कि रथ तो वही जगह में खड़ा है, घोड़े वही खड़े हैं, दोनों बालक रथ के ऊपर बैठकर आपस में बात कर रहे हैं। बोले ये क्या देखा मैंने, ये दिन दोपहर में सपना देखा। अरे स्वप्न किसी को देखता है, पानी फेंक तो स्वप्न टूट जाता है। अरे पानी में जमुना के ठंडे पानी में डूब कर स्वप्न देखा ये कैसे हो सकता है, स्वप्न तो इसे टूट जाता। बड़े आश्चर्य लगा, विचलित हुए, मैंने क्या देखा मैंने, दोबारा डुबकी लगाए, आंख खोले, अरे बाप रे बाप, अभी तो जो देखा, जो आश्चर्य जो अचरज देखा उसको बोला भी ना जा सके, आप तो देखते ही गए, आप जैसे आंख खोले हो दो बालक अभी नहीं थे, अब तो साक्षात अनंत शेष, अनंत कितने कहां तक विस्तृत है, सफेद सफेद बिल्कुल विशाल शेष रूप में अनंत कोटि फणा है उनका, मणि झलक रहा है उनके मस्तक में इसे विशाल शेष नाग के अंदर, और नील वस्त्र पहने हुए बलराम जी अपने हल में सल लिए। बाप रे बाप, तुरंत प्रणाम किए, बड़े बड़े सिद्ध चारण गंधर्व किन्नर सब प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, देख रहे हैं उनका तो सारे पानी के अंदर सारे रोम खड़े हो गए, हाथ जोड़ के स्तुति किए। देखते देखते दूसरे बालक दिखाई पड़ा, अरे वो भी बिल्कुल पीत वस्त्र, वही कुसुम, बिल्कुल शंख चक्र गदा पाणि, बिल्कुल आपने चतुर्भुज रूप में दर्शन करा दिए, बड़े बड़े देवता ब्रह्मा तक से लेकर शिव तक सब हाथ जोड़कर स्तवन कर रहे हैं। अकुर जी के बना वो भी तो पढ़े लिखे थे, वो भी स्तुति करने लगे। स्तुति क्या करते करते फ्यूज सीन ऑफ हो गया, सीन ऑफ हो गया। बोले ये क्या हो गया, अब जल्दी से बोले चलो जो हो गया, लेकिन इतने आश्चर्य उनका मन में आया, मन में सोच लिए कि अच्छा अब मुझे पता चला ये झांकी क्यों मुझे दर्शन हुआ, मेरे मन में कल रात से नींद नहीं आ रहा था, बड़े सोच विचार है ये बिचारे कुमलांग किशोर, किशोर भी नहीं हुए इतने बालक अवस्था में, छोटे छोटे बालक हैं, उनको मैंने मरवाने के लिए क्रूर कंस के पास ले जा रहा हूं, इसलिए मेरे मन में जो दुख है, जो आतुरता है, उस दुख को दूर करने के लिए प्रभु ने इस मुझे स्नान कराने के छल में ये जो दर्शन दिलाए, मेरा डर भाग गया, अब मन बिल्कुल आश्वस्त हो गया। और उनको कौन मारे, जिनके संकल्प मात्र से अनंत कोटि ब्रह्मांड के सृष्टि स्थिति प्रलय घटित होता है, ये कंस असुर, उनका सामने कोई कीट भी नहीं है, कीड़ा के बराबर नहीं होगा वो, क्या उनका करेगा, कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल आश्वस्त हो गए। आप उठ करके ढंग से स्नान टान करके पूरा हो करके बिल्कुल शांत चित्त होकर उठ के आए, आठ करके अपने वस्त्र पहनकर जब रथ में बैठे, कृष्ण बोल रहे हैं कि चाचा जी लगता है आपको मन थोड़ा चकित दिखता है, कोई ऐसा ना हो क्या, ना कोई पृथ्वी में आकाश में जल में कोई कोई विशेष चीज देखा क्या आपने, कोई ऐसा कोई आश्चर्य चीज देखा क्या मन में आपको लगता है, कोई बड़े आश्चर्य लगते मन में। अकुर जी ने बोले मैं क्या समग्र पृथ्वी में स्थल भाग में समग्र आकाश में समग्र जल के अंदर जो भी कुछ आश्चर्य संभव हो सकता है, जितने से बड़े आश्चर्य, सारे आश्चर्य का सारे स्रोत तो आप दोनों ही है, मेरे रथ में बैठे और क्या आश्चर्य देखूंगा, वही दोनों आश्चर्य ही देख रहा हूं। दोनों बच्चे हंस दिए, बोले चाचा चलिए कोई बात नहीं, देख लिया आपने, चलिए। तो रथ लेकर के चले, दोपहर तो यहीं हो चुका था। उन गोपों ने बड़े उत्साह से, इतना बड़ा फेस्टिवल होगा क्या होगा कैसे करके, गोपों का सकट भी कुछ कम स्पीड वाला नहीं था, अच्छे अच्छे बैल थे, बड़े वेगगामी था वो, जाकर सब पहुंच चुके थे लगभग, सब लगभग पहुंच चुके थे। गोपियों ने अपने घर में आकर के मन में केवल यही विचार कर रहे थे, हमारे लिए तो ये रात्रि काल रात्रि रहा, इस रात्रि का पूरा होकर के सवेरा हुआ, हमारा सर्वस्व लुंठित हो गया, प्राण हरण हो गया, केवल एक वचन के कारण हम जीवित रहना पड़ता है हमको, कितने दुख, इतने दुखित हो गए कि सारे मेल मेंबर तो लगभग चले गए थे मथुरा, जितने फीमेल मेंबर रह गए ब्रज में, बालिका से लेकर के वृद्धा पर्यंत, जितने गाय बछड़े वृषभ बैल आदि रह गए हो, जितने पशु पक्षी काक पर्यंत श्वान पर्यंत जितने भी छोटे छोटे चीटी पर्यंत आज इतने दुखी हो गए कृष्ण बलराम के जाने के बाद में, कोई एक जल के बूंद भी मुंह में नहीं लिए, सब निराहार निर्जल व्रत में रहे, इतने दुखी हो सब गए हैं। अब वहां पहुंचे मथुरा नगरी के बहिर प्रदेश में पहुंच चुके थे, एक उपवन था आम्र उद्यान, वहां पे सारे हजारों संख्या में छकड़ा बैलगाड़ी पार्क किए, पार्क करके अपेक्षारत थे कि दोपहर तो हो गया, सुबह से निकले खाए नहीं, भोजन करें, लंच घर में अपना अपना सब पैकिंग करके लाए थे, सब अपने अपने पत्नी सब दिए थे सब बना करके, लेकिन खाने के लिए मन नहीं करता, सामने खाद्य लेकर आए हैं, भूख भी लग रहा है लेकिन खा नहीं रहे, क्यों, दोनों बालक नहीं आए, बालक दोनों आ जाए, बालक दोनों को देखने से ही कुछ बनेगा, नहीं खा पा रहे, तो उन्हीं आशा से वो लोग बैठे हैं, आंख लगा करके कब आएंगे, इतनी बड़ी हाई स्पीड कार लेकर गए अब तक क्यों नहीं आ पा रहे हैं, क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं। अक्रूर जी ने स्नान के बाद में ये जो अद्भुत दर्शन प्राप्त किए थे, उनके अब मन में किसी प्रकार की शंका नहीं, बिल्कुल निशंक, बिल्कुल स्वस्थ चित्त हो चुके हैं कि बेचारा कंस का तो अभी काल पूरा हो गया, अब क्या होगा, अब सचमुच मथुरा के भाग्य उदय हुआ, मथुरा के भाग्य उदय होगा। बड़े हर्षोल्लास होकर के जितने बहुत खुश हो जाते हैं, बार बार पीछे मुड़कर के पैसेंजर को देखते हैं, बच्चे दोनों को देखते हैं, देखते देखते जा करके पहुंचते हैं यहाँ कंस महाराज उनके क्या विचार चल रहा है। जब से अक्रूर को सिखा बुझा करके एकादशी की रात को छोड़ दिए, यल्ली मॉर्निंग द्वादशी के सुबह सुबह गाड़ी भेजवा दी, नया कार भेजे थे, तभी से उनको भी टेंशन। हमेशा घड़ी देखते हैं, 10 मिनट पहुंच जाएगा, उधर हाई स्पीड कार है, 10 मिनट पहुंच जाएगा, लेकर आ जाना चाहिए। अब अक्रूर तो पहुंचते पहुंचते शाम होगा, उनको क्या पता बेचारा, उनको उन्होंने किसी को भेजा था उस दिन सुबह सुबह, मैसेज आ चुका था किसी का तो मन में सोच रहा था क्या अक्रूर कभी ऐसा कुछ हुआ ना क्या। अभी तक तो मैं एक भी, जब तक अक्रूर के अलावा जिसने अभी तक जितने को भेजा था सबका मैसेज ऐसा आया, ऐसा मैसेज तो अक्रूर जी का कुछ नहीं आएगा, लेकिन ऐसा कोई तो मैसेज नहीं आ रहा है ना। ना अक्रूर जी तो बड़े भगत है, बेचारा भद्र व्यक्ति है, ऐसा तो नहीं होगा शायद, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, अभी तक तो कुछ खबर नहीं। इतने अभी तक तो पहुंच जाना चाहिए, सुबह सूरज उगने से पहले गया था, क्या हो रहा है, पहुंच तो अवश्य गया होगा। अच्छा, हो ना हो पहुंच तो गया होगा, बदमाश अक्रूर जाके मेरा बात तो सबने बता दिया होगा, मैं उनको क्यों बता दिया है सर मेरा प्लानिंग, मेरा जो मेन प्लानिंग है कुटिल यंत्रणा मंत्रणा जो है, इस मंत्रणा में उनको से बता दिया, वो तो नहीं कर बताता नहीं दिया उनको, अगर बता दिया होगा तो अक्रूर को आज ही मार डालूंगा, आज मार डालू, इसे आए तो मारूंगा ना, नहीं बताया होगा, अगर बता दिया होगा तो क्या होगा, अगर बता दिया होगा तो क्या होगा, बस मैंने सोच रहे हो, उनका मन में बड़ी चिंता है, अगर बता दिया होगा तो क्या पता ये अक्रूर को अरेस्ट करके मार दिए होंगे, पता लापता कर दिए होंगे, हम आएंगे नहीं, तुझे भी गए जाए नहीं जाए, मैसेज ही नहीं भेजेंगे, नहीं 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 उनका चार साल लगे सचमुच उनको थोड़ी मारे होंगे, अगर अक्रूर को नहीं मारे होंगे, अक्रूर को कोई विवश कोई अरेस्ट कर हाउस अरेस्ट करके रख दिए होंगे, दोनों लड़के भाग गए होंगे, लापता हो गए होंगे, कहीं और चले गए होंगे, या कोई और बड़े कोई राजा राजन ने कोई शत्रु इकट्ठा करके लड़ाई करने की प्लानिंग करते होंगे, क्या करते होंगे, नाना प्रकार के विचार मन में आता है। बहुत प्रयास करके सोच विचार करके ये विचार कभी मन में नहीं आता है कि तेरे कुटिल मंत्रणा के तेरे मन की इच्छा पूरा परी हूबहू सुनकर भी अक्रूर जी ने उनको सारे बता दिया, उन्हें जाकर भी सुनकर भी आराम से बिना कोई तैयारी में बिना कोई सोचे विचारे दोनों आकर के आज ही पहुंच जाएंगे, ये तो कभी सोच नहीं सकता था। वो सोच रहा था कुछ गड़बड़ी हुआ होगा, साथ चले गए होंगे, अगर चले गए होंगे ऐसा हुआ होगा तो अक्रूर बदमाश को तो अब मैं देख लूंगा, वो नहीं होगा तो उनके घर वाले सार को मार डालूंगा, उनको मार डालूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, क्या क्या विचार मन में उसका गुस्सा आता है। बार बार घड़ी देखता है और सेवकों को पूछता है, कोई गाड़ी नहीं आ रहा है मथुरा के वृंदावन शिव से, कोई रथ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, कोई देख नहीं, पूरा दिन बीत गया नहीं आ रहा। नारद जी ने कंस को तो यहां बता दिए प्लान ऐसे ऐसे करके और जाके पहुंच गए थे, भगवान ने केसी को मारते ही नारद जी पहुंच गए थे, एक किनारे बुला लिए, प्रभु एक बात है बोलो नारद जी का, ना देखिए बहुत हो गया, मेरा एक इच्छा है, सारे प्लानिंग सर डिस्क्लोज कर दिए। बोले मेरा क्या इच्छा था, ना दो दिन के अंदर मामाश्री का काम बढ़ाइए अपने, दो दिन और ज्यादा नहीं, मत देर मत कीजिए, मैं अभी खूब बड़ा चढ़ा कर आया उसको, अब केवल उनको नहीं है, वो सारे नाम ले लेकर बोले उनको 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 ये सब ही आपको करना है, मुझे सब देखना है, एडवांस बुकिंग कर रहा हूँ सर, ये सब आपको करना है, हाँ पूरे द्वारका लीला पर्यंत सारे बता दिए, हाँ नारद जी ने बोले ये सब आपको करना है। भगवान गीता में कहते हैं, नामान कर्माणि लिप्यन्ति न च कर्म फले स्पृहा, मेरा कोई काम करने के लिए है ही नहीं, भगवान स्वयं अब तक काम है, आत्माराम है, आत्मा में सुख लेने वाले हैं, ये वस्तु से काम करके सुख क्या लेंगे उनको, उसको आवश्यकता ही नहीं, उनको भूख प्यास तो लगता ही नहीं, ना किसी चीज की आवश्यकता है। जो अपने आप में सुखी आनंद है, फिर दूसरे सहायता क्या चाहिए सुख के लिए, चाहिए नहीं। ना कोई उनका कर्म है, ना कर्म फल की आवश्यकता स्पृहा है। ये सब नहीं होते हुए भी भगवान बहुत ही काम में लगे हुए हैं, बहुत बिजी रहते हैं। किस काम में बिजी रहते हैं भाई? बोलते हैं भगवान की एक ही काम होता है करना, एक ही प्रोजेक्ट उनका है, दूसरा है नहीं। क्या प्रोजेक्ट है? भक्त वंशा पूर्ति बिनु नहीं आन कर्म। आपने भक्तों के इच्छा को पूर्ण करने के अलावा उनका दूसरा कोई प्रोजेक्ट है ही नहीं, ओनली वन प्रोजेक्ट बस। और नारद जी से भक्त जाकर के सारे बता दिए, लिस्ट पढ़ दिए, अब तो सारे करना ही पड़ेगा, उनको क्या करें उनकी इच्छा पूरा करना ही पड़ेगा। नारद जी ने सारे सुना दिए, आगे पर्यंत द्वारा का पर्यंत सारे बता दिए, फ्यूचर के बोले सब करना है फटाफट, अभी तो अभी अभी इसको करना है। तो भगवान अपने भक्त नारद जी के इच्छा पूर्ति के लिए भी योजना करते हैं, और इस प्रकार से सोच विचार में कंस भी बड़े चिंताग्रस्त है, और पूरे मथुरे वासी जितने मथुरा जनपद के लोग थे सब तो जानते थे कंस महाराज कैसा है। जब उन्होंने देखे कि सुबह सुबह ये नया कार लेकर के अकुरु जी गए, पता चल गया क्योंकि खूब सजावट चल रहा है कि ये दोनों बालकों को लाने के, वसुदेव के दो कुमार को लाने के लिए गए हैं, सबके मन में एक विचित्र प्रश्नवाची, क्या सही में आएंगे? नहीं आएंगे, भाग जाएंगे। कोई बोलता अरे देखना आएंगे, देखा नहीं कितने सबको मार मार कर रखे, क्या बिगाड़ देगा उनका? नाना प्रकार के कल्पना जल्पना इच्छा कई प्रकार से। अब इस प्रकार से विचित्र प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया अलग अलग स्थान पर कंस के राजभवन में, मथुरा में, मथुरा के बाहर में उद्यान में, वृंदावन में। गोप कुमारियां तो सोचती है कि हाय हाय हमारा तो सबसे बड़े दुख रात्रि बिता, हमारा तो सब कुछ छिन गया, सबसे बड़ा दुख हमको दिखाई पड़ा, लेकिन सबसे बड़ा सुख के सुबहरा प्राप्त हुआ मथुरा कुमारियों के लिए, उनका महाभाग्य उदय हुआ। आज रात के बाद में जो प्रभात आएगा उनके महासौभाग्य उदय होगा, उन्होंने कृष्ण को दर्शन करेंगे, कृष्ण दर्शन होगा उनका। उनका मन में ये विचार, इस अनेक अनेक प्रकार के लोगों के मन के जो अनेक अनेक प्रकार विचार, ये सारे क्रिया प्रतिक्रिया के बीच में रथासीन कृष्ण बलराम अप्रु के द्वारा चालित होकर के धीरे मंथर गति में मथुरा के बहिर्देश में जमुना पुलिन में अमर उद्यान में पहुंच रहे हैं। पहुंचने के बाद अभी क्या कर रहे हैं, अब काल सुनेंगे। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। महाराज का हम जोरदार कर धोनी से धन्यवाद करेंगे।